This is an ABP Life podcast.
मैं पीएम मोदी की सेना का एक सिपाही बनूंगा, ये ट्वीट किया है आज हार्दिक पटेल ने। हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ी है बीजेपी में आने के लिए, तो कुछ सोचकर ही आ रहे होंगे। मगर हार्दिक ने आखिर क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ और कैसे थामा बीजेपी का दामन, आज जानेंगे इस FII में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं साहिबा खान और आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FII। तो जी कहां थे हम? हाँ, हार्दिक पटेल के सियासी परवान चढ़ने की कहानी पर। 2019 में पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और कुछ हफ्तों पहले ये खबर आ गई कि पाटीदार कोटा नेता हार्दिक कांग्रेस भी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद उन्होंने शायद इसके बारे में सोचा होगा, क्योंकि पार्टी आला कमान से उनकी नाराजगी तभी से जग जाहिर है। बहुत ही कड़े पत्र में हार्दिक ने सोनिया गांधी को कई कड़वी बातें कही थी, जैसे कि कांग्रेस ने कभी भी लोगों को अपना रोड मैप नहीं दिखाया, इसलिए अलग अलग राज्यों ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया, कि कांग्रेस बड़े मुद्दों जैसे कि राम मंदिर, CAA, आर्टिकल 370 और GST के आड़े आती रही है और कभी इन मुद्दों का हल नहीं निकाला। हार्दिक ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस के आला कमान को गुजरात के लोगों से और उनके हित में नीतियां बनाने से ज्यादा अपने चिकन सैंडविच में दिलचस्पी है। ये बात राहुल गांधी के लिए कही गई थी। खैर, हुआ ये कि इस पत्र के कुछ ही दिन बाद ये अफवाह उड़ने लगी कि हो सकता है हार्दिक बीजेपी का दामन थाम ले। कांग्रेस के पूर्व नेता और कभी बीजेपी के धुर आलोचक रहे हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल होंगे। पटेल ऐसे समय में पार्टी में शामिल हो रहे हैं जब इस साल के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से राज्य में सत्ता में है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की कड़ी आलोचना की थी, जबकि फैसले करने की बीजेपी की क्षमता और कार्यशैली की तारीफ की थी। हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और बाद में उन्होंने राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। गुजरात में अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। जाने कैसा रहा हार्दिक का सियासी सफर। तो जी, हार्दिक सबसे पहले पाटीदार आंदोलन से चर्चा में आए। 28 साल के हार्दिक पटेल 2015 में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पाटीदार समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर किए गए आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में एक पुलिसकर्मी सहित 10 लोग और मारे गए थे और सार्वजनिक संपत्ति यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी और व्हीकल्स और वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद पटेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 124A, 121A और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था और वह 2016 से जमानत पर है। बीजेपी सरकार ने भी हाल ही में 2015 के आरक्षण आंदोलन के संबंध में हार्दिक पटेल और अन्य के खिलाफ दर्ज कई मामलों को वापस लेने के लिए कदम उठाए हैं। फिर पटेल ने बनाई नव निर्माण सेना। कुर्मी, पाटीदार और गुर्जर समुदाय को OBC में शामिल करना और उन्हें सरकारी नौकरियां दिलाने के मकसद से हार्दिक पटेल ने 9 सितंबर 2015 को पटेल नव निर्माण सेना का गठन किया था। इसी साल 18 अक्टूबर को हार्दिक पटेल पर राष्ट्रीय झंडे के अपमान का आरोप लगा और केस दर्ज होने के बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ी। फिर उन्होंने गुजरात चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू किया। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले साल 2017 में कांग्रेस को सपोर्ट किया था। इस विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल के अलावा कांग्रेस अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी की मदद से पूरे उत्साह के साथ मैदान में उतरी थी। हालांकि ठाकुर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए लेकिन उपचुनाव में हार गए। फिर आया 2019 जब पाटीदार नेता हुए कांग्रेस में शामिल। हार्दिक पटेल मार्च 2019 में अहमदाबाद में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के दौरान तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष यानी कि राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे, मगर फिर भी दंगों के ऐसे दाग लगे थे कि लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाए। क्या था वो मामला बताते हैं। मोसाड़ा दंगा मामले में जुलाई 2018 में एक सत्र अदालत ने हार्दिक पटेल को दोषी साबित किया था। इसके बाद हार्दिक ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दोष सिद्धि यानी कि गिल्टी होने पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और वह चुनाव नहीं लड़ सके। बाद में हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। आपको बताती चलूं कि हार्दिक पर कितने मुकदमे दर्ज थे। अहमदाबाद और सूरत में देशद्रोह के 2 मुकदमे दर्ज, 2015 में रैली में हुई हिंसा के बाद राजद्रोह का केस और 2015 में हुई अहमदाबाद में गिरफ्तारी। इसके बाद वो बने गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट। जुलाई 2020 में कांग्रेस की अंतरिम यानी कि इंटरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात में पार्टी को एक बड़ी मजबूती देते हुए हार्दिक पटेल को राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। तब पटेल ने कहा था कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मुझे एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि पार्टी साधारण पृष्ठभूमि के लोगों को बढ़ावा देती है और 2022 में कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, ये उनका दावा था। ये सब बोलकर अब हार्दिक ने लिया कांग्रेस से इस्तीफा। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए राज्य कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने 5 मई को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। सुनते जाइए, हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस को गुजरात में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह सिर्फ नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध कर रही है। पार्टी ऐसा विकल्प नहीं बना पा रही है जिसकी लोग तलाश कर रहे हैं। पार्टी राष्ट्रहित में और समाज के लिए कार्य करने में विफल रही, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। देखो भैया, ये सब तो ठीक है, पार्टी बदलने के लिए नेताओं के पास कब बहानों की कमी पड़ी है, मगर दिलचस्प बात ये भी है कि पाटीदार आंदोलन के सदस्यों ने हार्दिक पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। भावनगर से कभी हार्दिक पटेल के सहयोगी रहे भावेश सोमानी ने कहा था कि उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया पर हार्दिक पटेल के निर्देश पर चप्पल फेंकी थी। सोमानी ने हार्दिक पटेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि हार्दिक ने 2017 में गरियाधर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए टिकट देने के लिए 23 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। सोमानी ने कहा कि 10 लाख रुपए उनके पिता भरत भाई को उनके अहमदाबाद के फ्लैट में दिए गए और बाकी भुगतान अंगदिया सर्विसेज के माध्यम से 2 किस्तों में दिया गया। तो ये थी हार्दिक की अभी तक की सियासी कुंडली। वो कब विवादों में आए, कैसे उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा और फिर इस्तीफा देकर कब भाजपा के हो लिए। गौरतलब है कि चुनाव भी पास है और साफ तौर पर देखा जाए तो हार्दिक को शायद कांग्रेस के जीतने की, या फिर जो वो बात कर रही थी कि ये 2/3 या 1/3 और ये और वो लेकर के सत्ता में आएंगे, शायद उन्हें वो मामला जम नहीं रहा, उनको समझ नहीं आ रहा है। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। बेसिकली उन्हें कांग्रेस की जीतने की उम्मीद नहीं लग रही। ठीक भी है, डूबते हुए जहाज में कौन सफर करना चाहेगा। मगर फिर भी किसी पार्टी के बारे में इतना कुछ बोल करके जब आदमी वापस उसी में जाता है तो उसकी कितनी वक्त होती है ये कहना मुश्किल है। हाँ, मगर हो सकता है कि बीजेपी को भी इस समय पाटीदार वोटों की जरूरत हो। नो वोट इज यूजलेस वोट। तो हार्दिक को कोई चमचमाता पद मिल जाए, ये भी हो सकता है। देखो, ये पॉलिटिक्स है मेरे यार, यहाँ लोगों को मार कर दफनाया या जलाया नहीं जाता, बल्कि मुर्दों को आगे के लिए रख दिया जाता है। क्या पता कल को शायद ये भी बोलने लगे। फिलहाल मैं चलती हूँ, अब अगले FIR में मिलूंगी। पॉडकास्ट की साउंड डिजाइनिंग की है ललित ने और आप सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।
हर पल बदलती दुनिया में कोई अपडेट मत करो मिस। डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।